शांति। कितने हर्ष का विषय है कि दिल्ली जोन के भाई बहनों के साथ ही मैं दिल्ली में रहने वाला आपका भाई, लेकिन प्यारे बाबा के मधुबन के डायमंड हॉल में बैठ करके हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बैलेंस। बैलेंस से मिलती है ब्लेसिंग और मिलती है ब्लिस। ब्लिस माने आनंद स्वरूप, जो कि आत्मा का निजी स्वभाव है, सत्य चित और आनंद स्वरूप। बैलेंस ना होने के कारण हम आनंद स्वरूप को तो भूल गए हैं, एक छोटी मोटी शांति को ही अपना लक्ष्य बनाया हुआ है। शांति भी दूर भागती जा रही है। अब मोटे रूप से आप सब जानते हैं, कोई नाव नदी को क्रॉस करने वाली है और उसमें कई लोग बैठे हैं। अगर बैलेंस ना रहे तो सारे लोग एक ही तरफ आ जाएं तो नैया का क्या हाल होगा? पार उतरेगी या के डूब जाएगी? क्या ख्याल है? इसी प्रकार से आप देखेंगे बैलेंस एक बहुत ही गहरी चीज है। बैलेंस तराजू को भी कहा जाता है और हम सब जानते हैं कि न्याय का चिन्ह जो होता है कोर्ट का, उसमें एक तराजू दिखाया जाता है। अब तराजू के भी बैलेंस में बहुत बातें हैं। अगर आपने लकड़ी तोलनी हो तो लकड़ी तोलने का जो तराजू होता है उसमें 5-10 किलो का फर्क भी पड़ जाए, आपने 2 मन लकड़ी तोलनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सोना तोलने का तराजू हो तो सोने तोलने के तराजू में जरा भी फर्क पड़ जाएगा तो कितना नुकसान हो जाएगा। और बाबा तो हीरे की बात करता है, आपका जीवन हीरे तुल्य है, और अगर हीरा तोलने के तराजू में जरा भी फर्क पड़ जाए तो कितना फर्क पड़ जाता है। इसलिए हमको बैलेंस को हीरे की सामने रख करके ध्यान रखना है, कितना नाजुक इसका कैलिब्रेशन है। ये हीरे को तोलने वाली जैसे चीज होती तराजू, ऐसे हमारा जीवन में बैलेंस होना चाहिए। अगर आप और उदाहरण लें तो जो चांद के ऊपर रॉकेट भेजते हैं उनकी जो कैलकुलेशन होती है वो कितनी एक्यूरेट होती है। अगर जरा सा फर्क पड़ जाए तो रॉकेट कहाँ जाएगा? हैं? चांद की जगह किसी और जगह चले जाएगा। आप भेजेंगे बृहस्पति ग्रह पर, चले जाएगा शनि ग्रह पर। इसलिए बाबा की मुरलियों में ये बैलेंस शब्द बार बार आता है और बच्चे बैलेंस रखते भी हैं, लेकिन कोई लकड़ी तोलने वाला तराजू रखते हैं, कोई सब्जी तोलने वाला तराजू रखते हैं, कोई सोना तोलने वाला रखते हैं और कोई हीरा तोलने वाला। अब 8 की माला में कौन आएंगे, 108 की में कौन आएंगे, 16,000 की में कौन आएंगे, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो हमें अगर जीवन को हीरे तुल्य बनाने का जो हमारा मार्ग है, संगम पर हम हीरे तुल्य बनाते हैं, तो हमें उस ख्याल से बैलेंस को देखना चाहिए। अब आप देखिए कि आमतौर पे कहा जाता है ये व्यक्ति अंदर बाहर एक नहीं है, इसके अंदर कुछ होता है बाहर कुछ होता है। और हमेशा हमें कहा जाता है कि सच्चाई, दादी जानकी जी ने कहा हुआ, स्वच्छता और सादगी, ये तीनों चीजें तब आ सकती हैं अगर हमारे संकल्प में, बोल में और कर्म में समानता हो। संकल्प बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े करते हैं, हर एक ये चाहता है, संकल्प की लेवल पे तो कमाल है, बाबा की मुरली है, आकाश तो छूने वाले संकल्प करते हैं, लेकिन बीच में कुछ हो जाता है। वो संकल्प जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो बहुत थोड़ी परसेंटेज रह जाती है, और बाबा कहते हैं इस परसेंटेज को बढ़ाओ, यहां तक कि आपके संकल्प तो छोड़ो, सपन संकल्प, बोल कर्म, संबंध संपर्क, सब में समानता और स्पष्टता हो, हमें जरूरत ही ना पड़े फर्क डालने की। अब आप देखिए फर्क क्यों पड़ता है, एक तो मैं से पड़ता है, बाबा ने हमको बेहद में रखा हुआ है, सारा हमारी पढ़ाई बेहद की है, विश्व की बादशाही बेहद की है, ज्ञान बेहद का है, अति इंद्रिय सुख बेहद का है, 21 पीढ़ी तक हमारा चलना है, और अगर हम हद में आ जाएंगे, छोटी हद या बड़ी हद, तो आप देख सकते हैं कि फर्क पड़ जाएगा। बोलेंगे हम विश्व कल्याणकारी, और मन में क्या होगा कि हम स्व कल्याणकारी या अपना एरिया कल्याणकारी बन जाए, फर्क हो गया। इसलिए एक तो ये मैं वाली बात है, दूसरे बाबा कहते हैं जो रोज कहते हैं वो है व्यर्थ। अब कोई चीज में ताकत होती है जब वो रियल होती है, उसमें एडल्ट्रेशन नहीं होता, उसमें मिक्सचर नहीं होता। अब आप देखिए कि संकल्प को ही ले लो, सपन तो उसके बाद की स्टेज है, संकल्प में हम बहुत अच्छा संकल्प करते हैं, जब मुरली सुनते हैं, किसी संगठन में आते हैं या दूसरे को देखते हैं हमसे अच्छी धारणा वाले को, तो जोर से संकल्प आता है, क्या आता है, हमें भी ऐसा करना। अब क्या होता है कि उस संकल्प, अगर वो संकल्प व्यर्थ के बगैर हो, ओरिजिनल हो, प्योर हो, तब तो पावरफुल है, समर्थ है, वो तो प्रैक्टिकल में आएगा। लेकिन अगर उसमें व्यर्थ का मिक्सचर हो जाए, और इतना मिक्सचर हो जाए कि ओरिजिनल संकल्प तो बिल्कुल खत्म ही हो जाए और व्यर्थ ही व्यर्थ हो जाए, और आप उसको ढूंढ कर अंदर से कहें तू काम में आ, तो व्यर्थ चारों तरफ से उसको घेर लेगा, तो आएगा ही नहीं प्रैक्टिकल में। इसलिए हम देखें कि व्यर्थ क्यों आता है, तो बाबा ने कह रखा है व्यर्थ जरा सा भी आ गया तो क्या होगा, किसी ने निशाना लगाना है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है निशाने का। अब किसी ने निशाना लगाना है, उसका निशाना बिल्कुल बुलजाई में जाके बिल्कुल निशाने पर लगे, उसमें व्यर्थ का मार्जिन रहता, जरा भी इधर उधर हुआ तो निशाना गया। अब बाबा कहते हैं आपका निशाना कौन सा है, रोज हमें कहते हैं, पहली बात तो एक बाबा, अच्छा हम सब एक बाबा कहते हैं, हमारा और है ही कौन, भक्ति में हम एक परमात्मा कहते थे, अब हमें ज्ञान मिल गया कि नहीं, परमात्मा जनरल नहीं है लेकिन वो हमारा पिता है, टीचर है, सतगुरु है और उनका निवास भी पता है और उनके हमारे साथ संबंध भी पता है। अच्छा, तो निशाना लगाने के लिए पहले तो ये निश्चय दृढ़ और लाइफ के अंदर होना चाहिए कि हम केवल और केवल एक बाबा के साथ कनेक्टेड हैं। अब बाबा ने क्या बताया हुआ कि सारे ही संबंध मेरे साथ हो, पहली बात है संबंध, उसके बाद बात दूसरी बनती है। तो माता पिता, अब गीता पढ़ेंगे, गीता के फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ है, तो मेरे माता से पिता, उसी से आप सिद्ध कर सकते हैं कि श्री कृष्ण जी नहीं हो सकते, क्योंकि तो माता पिता आज भी मुरली में था, नर नारी इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए एक पिता से शुरू होता है। बाबा कहता है हियर नो ईवल, सी नो ईवल, थिंक नो ईवल। ईवल क्या होती है? हम समझते कोई बहुत बुरी बात हो वो ईवल होती है, नहीं, व्यर्थ भी ईवल है क्योंकि वो हमारे निशाने से हमें साइड में कर देता है। तो बाबा ने इसलिए पांच शब्द हमें बताए हुए हैं। पहला है एक नामी, हम सब जानते हैं, मुरलियों में बार बार आता है एक नामी, मैंने बस एक के हैं, उसके अलावा किसी के नहीं है, बाकियों के साथ हमको निभाना है, ट्रस्टी होकर निभाना है। इस हिसाब से निभाना है कि हमारे हिसाब किताब चुक्त हो जाए, क्योंकि नहीं निभाएंगे ऐसे जबरदस्ती थोड़ी है, अब किसी को छोड़ के चले जाओ, आपका उसके साथ अकाउंट है, वो तो सेटल करना पड़ेगा। छोड़ के जाओगे तो शारीरिक रोग आ जाएगा, कोई मन की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा वैसे भी तुम्हारा कर्म योग है, इसलिए वो अलग बात है, लेकिन सच्चे दिल से सच्चा प्यार सच्ची लाइफ दी हुई है तो बाबा को, हम सब ने दी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं तो हम डायमंड हॉल में क्यों बैठे हो, बाबा के डायमंड हॉल में। और हम ये भी जानते हैं चाहे हम भोजन करते हैं, चाहे घर में रहते हैं, चाहे कोई काम करते हैं, तो लक्ष्य तो यही रहता है कि बाबा की सेवा करनी। लेकिन अब उसको आप कंपेयर करें, एक दादी जानकी का एग्जांपल ले लें कि दादी जानकी भी हमारी तरह है, वो भी मुरली सुनती हैं, मुरली सुनाती हैं, दिनचर्या व्यतीत करती हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, बल्कि बाबा कहते हैं बच्चे ज्यादा करते हैं, भाग दौड़ ज्यादा करते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है कि वो भरा हुआ है, स्वरूप बने हुए हैं। किसी नए व्यक्ति के पास भी चली जाए, मान लो यूपी के चीफ मिनिस्टर के पास गई, उसका हाथ पकड़ा, तो उसको ऐसे फील होता है कि मुझे कुछ सख्त प्राप्ति हो गई और वो खुश होता है दादी का हाथ पकड़ना, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कोई मुसलमान नेता हो अरब कंट्री का। अब ये फर्क क्या है, वो स्वरूप है। तो बाबा ने कहा हुआ सुनने वाले, मानने वाले, तो मानने वाले आस्तिक हैं और जो मानते नहीं है वो सब नास्तिक हैं। तो आस्तिक भी हैं लेकिन आस्तिक अपने लिए हैं, परसेंटेज में है, लेकिन उसको स्वरूप बनने वाले वो बहुत थोड़े हैं और बाबा के शब्दों में सिर्फ आठ हैं। अच्छा चलो, आप आठ नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, उसके आगे तो कोशिश करें। तो तब बाबा कहता है कि एक होती है लगन, एक होता है संबंध। अच्छा, जो लगन वाला संबंध होता है वो अग्नि का रूप करता है, लगन की अगन कहा जाता है। तो हमारे अंदर लगन की अगन कितनी है, तो बाबा कहते हैं आप चेक कर सकते हैं। आपको कोई शारीरिक तकलीफ आ गई, अमृत वेले का टाइम है, बाबा ने कहा हुआ, प्यार से कहा हुआ, बच्चे अमृत वेला बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर तुम्हारा सारा जीवन का आधार है, ठीक है, हम सब जानते हैं। कुछ तकलीफ आ गई तो मन में क्या आता है कि चलो तकलीफ है, यही अमृत वेला कर लेते हैं, पहला संकल्प तो ये आएगा। अच्छा ठीक है, फिर आएगा लेटे लेटे ही कर लेते हैं और बाबा के पॉइंट्स को मन में रखेंगे। बाबा ने कहा है ना बच्चा, यहाँ ये तुम्हारा योग जो है ये कोई ऐसे बैठ के लगाने का थोड़ी है, तुम चलते फिरते उठते बैठते लगा सकते हो, ये पॉइंट भी आ जाएंगे। तो अगर उसी वक्त हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए तो क्या हम लेटे लेटे कहेंगे हमें अस्पताल ले चलो, जल्दी ले चलो, बचाओ है? या हमारी खाट के नीचे सांप आ जाए तो हम कहें आज तो तबीयत खराब है? नहीं होगा। तो बाबा ने कहा है मजबूरी के कारण आप शरीर को चला लेते हो, लेकिन लगन के कारण, क्योंकि लगन ठंडी है, अब अगन आप जानते हैं, माताएं भी जानती हैं, कई चीजें ठंडी आंच पे पकाई जाती हैं, कई चीजों के लिए बहुत तेज आंच चाहिए। तो बाबा ने कहा छोटे छोटे विक्रम सालों साल आप विनाश करते रहे, लेकिन जो कड़े और पर्सनल हर एक के खास संस्कार हैं जो व्यक्ति को मजबूर करते हैं कुछ छुपाने के लिए, कभी बहाना करने के लिए, कभी थोड़ा सा झूठ भी बोलने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि मैं ठीक, अंदर जानता है कि मैं ये ऐसे ही कह रहा हूँ। कोई कह जी वहां आना, कल 4 बजे आना, हाँ हाँ जरूर आएंगे, फिर धीरे से कहेंगे कोशिश करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि दूसरे ने कि आना है कि नहीं आना। तो बाबा कहते रोज मैं ये खेल देखता हूँ, इसलिए बैलेंस नहीं रहता। अब बैलेंस बिगड़ जाता है तो आप देखिए बिगड़ते 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 कोई भी चीज थोड़ी सी गलती से शुरू होगी। आपने कोई रास्ता गलत ले लिया, पहले तो थोड़ा सा फासला है असली से तो गए, अब गलत बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो आपका डिस्टेंस दूर होता जाएगा। आखिर फिर क्या होगा, आलस से आ जाएगा, अलबेला पाने रहेगा, चलो छोड़ो जितना है उतना ही सही कर तो रहे हैं। फिर बाबा कहता दूसरे की तरफ देखेंगे, वो भी कर रहा है, बड़े बड़े भी कर रहे हैं, ठीक है पहुंच ही जाएंगे, बाबा का हाथ पकड़ा है, बाबा पहुंचा देगा, बहुत बातें करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले यह एक स्लोगन आया था, आप जानते हैं स्लोगन क्या था, क्वेश्चन करना, करेक्शन करना, कोटेशन देना की बजाय कनेक्शन ठीक रखो आया था। अब ये क्वेश्चन करना, करेक्शन करना, कोटेशन देना हम करते क्यों हैं? क्योंकि कनेक्शन ढीला है, आपके मोबाइल का कनेक्शन ढीला हो, 2 बार देखते हो कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, बड़े ध्यान से अपने मोबाइल को चार्ज रखते हो, तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। और ये वाला आत्मा का चार्जिंग, तो बाबा कहता है जब तक बिल्कुल टाइट कनेक्शन नहीं होगा तो आपको वो जो बाबा सकाश देता है, आपको जो वो अलौकिकता महसूस होनी चाहिए वो नहीं होगी। आप बैठ के योग लगा लिया, अर्थात सोचा मैं योग लगा रहा हूँ लग रहा है, सोचते सोचते ही ना टाइम खत्म, प्राप्ति क्या हुई? इसलिए बाबा कहता है कि जितना जल्दी प्राप्ति कर लोगे उसका फायदा ज्यादा हो जाएगा। तब बाबा ने कह रखा है पर चिंतन नहीं करना, हम सोच सकते हैं सारे दिन में पर चिंतन नहीं करना। बाबा कहता है तुम्हारे को तो मेरी डायरेक्शन है, सिर्फ बाप को देखो, ऑलवेज सी फादर, डोंट सी ब्रदर एंड सिस्टर। परंतु ब्रदर एंड सिस्टर को भी देखते हैं तो उसकी कमी देखते हैं, ताकि अपनी कमी भूल जाए और उसकी कमी देख के तसल्ली कर लेते हैं, हाँ हाँ उसमें भी कमी है ना। तो बाबा कहते हैं ये क्या है, फिर कोटेशन भी करते हैं, वो भी तो ऐसे करता है। तब बाबा कहता है ये बहुत बहुत ही बैलेंस, बड़ा डेलिकेट बैलेंस है और इसको हर व्यक्ति हर आत्मा अपने लिए ही धारण कर सकते। अब आप देखिए ये बैलेंस का सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे सिंपल उदाहरण है बिजली। अब ये जो बिजली है स्थूल शक्ति है, लेकिन कितनी बड़ी शक्ति है। बिजली से आप लाइट जगा सकते हैं, मोटर चला सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, रुक सकते हैं, बहुत काम करती है। लेकिन बिजली के पीछे रहस्य क्या है? यहाँ कई भाई बहन बिजली को जानते होंगे, बिजली का काम जानते होंगे। बिजली के पीछे रहस्य क्या है? उसके 2 तार होते हैं और दोनों तार पैरेलल चलते हैं, बिजली भी दो तरह की होती है, एक एसी होती है, एक डीसी होती है। तो बाबा कहता है कि विकार भी दो तरह के होते हैं, एक एसी वाले, एक डीसी वाले, एक धक्का मारने वाले और खींचने वाले। जैसे क्रोध है, क्रोध कौन सी बिजली है, अहंकार कौन सी बिजली है, और काम और लोभ और मोह कौन सी बिजली है, तो फर्क पड़ जाएगा ना। इसलिए कहा गया कि राग और द्वेष, राग मैंने पकड़ने वाला, द्वेष मैंने धक्का मारने वाला। तो ये चीजें बच सकते हैं हम इनसे अगर दोनों तार हमारे पैरेलल चलेंगे, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, आपके दोनों तार पैरेलल चलेंगे और जो जौन सा तार है उससे उसी प्रकार का जोड़ेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो बिजली को जहां मर्जी ले जाओ। लेकिन मान लीजिए हमने गलती से उल्टा जोड़ दिया, फिर क्या होगा, फिर जोर से स्पार्क निकलेगा, फ्यूज हो जाएगा, शॉक लगेगा। तब बाबा कहे जिंदगी में भी अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव को न्यारा और प्यारा से चेंज कर दें, अच्छा अब न्यारे से न्यारा, जिससे न्यारा रहना न्यारा ही रहो, न्यारा ही जोड़ते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्यारे से प्यारा जोड़ते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हमने गलती से क्या किया, उल्टा जोड़ दिया, तो क्या होता है, बिजली में फ्यूज होता है और ज्ञान में कंफ्यूज होता है। आपकी बुद्धि का फ्यूज उड़ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, कर तो मैं ये रहा हूं, प्राप्ति ये हो रही है। इसलिए उसी लेवल पर तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं कि बच्चे आप, आपका मुंह किधर है, आपका मुंह किधर है। हमारा मुंह, मुर्दे का तो मुंह चेंज करते हैं वो, लेकिन हमारा मुंह किधर है, हमारा मुंह है फरिश्ता बनने पर, परम धाम जाने पर और सतयुग जाने पर। तो अगर आपका मुंह एक तरफ है तो दूसरी तरफ आपकी पीठ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बाबा कहता है कि मैंने तो तुमको शरीर तुम्हारा बैलेंस सिखाता है, अब जानवर जो होते हैं चार पैरों पर बैलेंस करते हैं, कई ऐसे कीड़े मकौड़े हैं बहुत सारे उनके पैर होते हैं, लेकिन मनुष्य दो पैर पे बैलेंस करता है और जानता है सारी जिंदगी दो पैर पे बैलेंस करता है, दौड़ भी सकता है, उछल भी सकता है, ऊपर आके छलांग भी मार सकता है, तो दो पैर उसके बैलेंस में होने चाहिए। इसी प्रकार से बाबा ने कहा अपने बुद्धि को बैलेंस में रखो, कीप योर हेड इन बैलेंस। और हठ योगी ने क्या किया कि बैलेंस योर बॉडी ऑन योर हेड, कि सिर के ऊपर बॉडी लेवल कर लो तो आप बैलेंस में आ गए। उल्टा है ना, तो बातें बातें पकड़ी हुई हैं। तो बाबा कहता है कि सिंपल सिस्टम है, मैंने बहुत आसान बताया है, कुछ भी नहीं करना। अगर आप घर गृहस्थी में रहते हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छा ही है, क्योंकि घर गृहस्थी सतयुग में भी होता है, कोई जंगल में जाने वाले तो सतयुग में आएंगे नहीं। लेकिन घर गृहस्थी में एक फैक्टर है सिर्फ मेरा, तो उसको निकाल दो। हम मेरा निकाल देंगे तो बाबा का हो जाएगा, तो बाबा का हो जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरा है, मेरा घर है, मैं जिस तरह मर्जी सोऊं, जैसे मर्जी पैसा खर्चूं, जो मर्जी करूं, बाबा का है तो फर्क पड़ जाएगा कि नहीं ये मेरा नहीं है, मैं तो इसका ट्रस्टी हूं। अगर ट्रस्टी बने तो क्या हुआ, न्यारे हो गए, परे वृत्ति हो गई और बाबा के प्यारे हो गए, और जरा सा विस्मृति आई, बीच बीच में आती रहती है, तो बने गृहस्थी, तो फिर क्या हुआ, बाबा न्यारा हो गया। तो बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ कि बच्चे मैं साथी हूं तो दुनिया से तुम्हें साक्षी होना पड़ेगा, और दुनिया को साथी बनाओगे तो मैं साक्षी हो जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा, हाय हाय करेंगे, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, बाबा मुझे बचाओ, मैं तेरा बच्चा हूं, मैंने बाहर का खाना पीना छोड़ा हुआ ये वो। तो बाबा मुस्कुराता है, कहते हैं वो तो मैं भक्तों की भी आश पूरी कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी असली प्राप्ति है, जो तुम मेरे बच्चे बने हो, बच्चा इस तरह थोड़ी मांगता है। आज भी बाबा ने कहा बच्चा कोई बाप को नमस्ते थोड़ी करता फिरता, ऑफिस गया तो नमस्ते जी, घर आया तो नमस्ते, उसके दिल में नमस्ते रहती है। इसलिए ये सीधी सीधी बात है जिसको बाबा ने कहा हुआ है, बेहद की वैराग मिलती है। हद की नहीं, हमें हद का वैराग आता है जब ठोकर लगती है। किसी से हम बहुत अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, बाबा ने कह रखा मेरे साथ बनाओ, जब वो व्यक्ति आप किसी न किसी मौके पे देखते हैं कि मजबूरी के बस या स्वार्थ के बस आपका साथ छोड़ता है, हम लिमिटेड चीजों के लिए लिमिटेड आत्माओं से संबंध रखते हैं, किसी से किस चीज के लिए, किसी से किस चीज के लिए, किसी से किस चीज के लिए, तो जैसे भमरा होता है तो भमरा अलग अलग फूलों पे जाता है, भटकते रहते हैं, भक्ति में भी हम भटकते रहे। बाबा कहता है मैं तुम्हारी भटक रोकता हूँ, मेरे से सारे संबंध रखो। इसलिए एक नामी एक का नाम, लोग तो भक्ति में राम राम जपते रहे, कृष्ण कृष्ण जपते रहे, वो नामी नहीं, एक का नाम। फिर बाबा कहता है उसके बाद एकांत, एक के अंत में जाना, एक का एकांत ये भी जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ में बैठ करके रहें, अपनी लाइफ को इस तरह की बना लें तो भी आप लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। कोई सिनेमा घर में जाके कहे कि मैं योग लगा रहा हूँ यहाँ बैठ के, वो भी नहीं। लेकिन एकांत का मतलब है एक के अंत को जानना और फिर दुनिया के अंदर कर्म में आना। बाबा तो कहता है अपने आप को परम धाम में रखो सुबह, जैसे मैं परम धाम से नीचे अवतरित होता हूँ आप भी शरीर में अवतरित हो। कभी नहीं समझो हम यहाँ के वासी हैं वहाँ जाना है, वो ऊपर उठना भारी होता है, वहाँ का निवासी हूँ नीचे आना, बाबा ने ये भी बताया हुआ। इसलिए फिर क्या होगा, जब हम एक के अंत में रहेंगे, एक के नाम को सदा ध्यान में रखेंगे तो फिर हमारा मन एकाग्र होगा। तो बाबा कहते हैं तीसरी बात है एकाग्रता। आप देख लीजिए कोई भी चीज एकाग्रता से अचीव की जा सकती है। स्कूल में भी पढ़ाते हैं कि शीशा लगाओ तो कागज को आग लग जाती है, सूर्य की रोशनी अग्नि एकाग्र हो जाती है। तो ऐसी लगन वाली एकाग्रता होगी तो क्या हमारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। अब बाबा कहता है अगर विक्रम साथ लेके फिरो, और कई बार तो ऐसा धोखा खा लेते हैं हम, पिछले विक्रम विनाश करते जाते हैं अगले बनते जाते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं तो सोचते हैं इससे भी मैंने कनेक्शन तोड़ लिया, इससे भी तोड़ लिया, और कई जो जुड़ा हुआ उसको भूल जाते हैं। जैसे कोई मकान की 8 खिड़कियां बंद कर ले, 9वीं खाली छोड़ दे, तो माया कहती है मेरे लिए बहुत ईजी है उसके अंदर से सारा नुकसान करना। तो कई बार हम 99% को गिन लेते हैं कि बस 99 तो हो गया ना, बाबा कहता 99 व्यर्थ हो जाएगा अगर आपने बाकी 10 नहीं किया। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं संपन्न संपूर्ण सर्व। तो पहली बात तो ये सर्व, सर्व शक्तियां या कुछ शक्तियां, कुछ शक्तियां तो हर एक में है, सर्व गुण या कुछ गुण, और फिर सदा सदा मैंने वो प्रैक्टिकल में हम ला सके। मेरे अंदर शक्ति तो है लेकिन मौके पे नहीं आती तो भी कोई फायदा नहीं है या नहीं है। आपके पास बैंक में बहुत पैसे हैं, आपकी जेब में कैश नहीं है, किसी दुकानदार को कहो मेरे बैंक में बहुत पैसे हैं ये सामान दे दे, मैं कल दे जाऊंगा, कोई मानेगा? इसलिए बाबा कहते ये भी नहीं। तो हमारा क्या है, सदा सर्व, और इसके लिए चाहिए सहज। कोई भी चीज अगर सहज नहीं होगी तो सदा नहीं रह सकती। और इस तभी बाबा कहता है सादगी रखो, और सादगी का मतलब है अपनी प्रवृत्ति को समेट के रखो, जितनी थोड़ी होगी उतना अच्छा है, संकल्प भी थोड़े उठेंगे तो थोड़े संकल्प जो होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं, और ज्यादा संकल्प जो हैं वो कमजोर होते हैं। जैसे किसी के 2 बच्चे हैं उनको पालना आसान है, किसी के 6 बच्चे हैं तो 2 की पालना 6 में बट जाएगी। तो बाबा ने ये भी कह रखा कि नेगेटिव संकल्प ज्यादा पावरफुल होते हैं। ऐसा क्यों? रोशनी ज्यादा ताकतवर होती है या अंधेरा? रोशनी। तो पॉजिटिव संकल्प पावरफुल होने चाहिए, लेकिन ये युग ऐसा है जिसमें नेगेटिव संकल्प पावरफुल होते हैं। जैसे आप डेजर्ट एरिया में चले जाओ रेगिस्तान में, वहां आपको गुलाबों का रोज गार्डन बनाना है तो कितना मुश्किल है, कांटे लगाना है तो कल उगे आएंगे। तो बाबा कहते हैं कलयुग को है ही कलयुग इसलिए कि ये युग दुख का युग है। और हम क्या करते हैं, कभी कभी धोखा खा लेते हैं कि सुख भी मिल सकता है इसमें। आप बताइए सतयुग में दुख होता है? होता है? कोई चीज दुखदायी होती है या देखने में भी अच्छी ना लगे ऐसी होती है? मान लो छिपकली है तो देखने में अच्छा नहीं लगता, क्या सतयुग में छिपकली होती है? कूड़ेदान होता है? अच्छा, आप यहाँ तो सड़कों पर जाएंगे तो आपको कितना कितना कूड़ा मिलेगा, आपको देखना पड़ता है। अच्छा, अगर ये पक्का है कि सतयुग में दुखदायी और खराब चीज नहीं होती, अब इसको उल्टा कर लो, अगर सतयुग में दुखदायी चीज नहीं होती, ना देखने वाली दिल को खराब करने वाली चीज नहीं होती, कोई भी चीज दुख देने वाली वहां हो ही नहीं सकती, तो क्या कलयुग में कोई सुखदायी चीज हो सकती है? आपने सर उल्टा किया है, हैं? क्या कलयुग में कोई आपको रियली असली तौर पे सुख देने वाली चीज हो सकती है? बाबा ने मोटे रूप से कह दिए दुख धाम है, और क्या चाहिए। लेकिन ब्राह्मण धोखा खा जाता है, वो सोचता है कि भाई कुछ कुछ तो सुख की चीजें हैं ना, मान लो सेब खाना है, सेब खाना तो सुख की चीज है ना, उसमें क्या नुकसान है? वो ये भूल जाते हैं ये कलयुगी सेब है, कलयुग में कोई अच्छी चीज भी होगी वो खराब हो जाएगी। जैसे किसी गटर में कुछ भी डाल दो, आप एक सेब को गटर में डाल दो निकालो तो आप खा सकते हैं उसको, नहीं खा सकते। इसलिए यहां धोखा खा जाते हैं कि है ही कलयुगी, तो कलयुग में है ही खराब स्थान, दुख धाम है, तो दुख धाम में सुख ढूंढना बाबा कहते ज्ञान नहीं है। इसलिए इससे सख्त नफरत रहे, इसकी किसी चीज में लगाव ना रहे, तब आपका उधर लगाव बढ़ेगा। तो बजाय हम ये कहें कलयुग की ये चीज छोड़ दो, वो चीज छोड़ दो, नहीं, आप सतयुग की अच्छी अच्छी चीजों को याद करो। और बाबा ने हमको क्या कहा, देखो मैंने तुमको पूरा ज्ञान दिया, तीनों कालों का, तीनों लोकों का, तुम्हारा तीसरा आंख खोला। अच्छा, अब तीसरा आंख खोला इसलिए कि तीसरे आंख से सी नो इवल स्पीक नो इवल आप ही हो जाएगा। अब कितना आपको दिया, हिस्ट्री भी ज्योग्राफी भी खूब अच्छी सारी दी, सतयुग में जाओ, त्रेता में जाओ, संगम युग में जाओ, सूक्ष्म लोक में जाओ, परम धाम में जाओ, कितना एरिया है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा तो द्वापर में थोड़ा चले जाओ, लेकिन आप कलयुग में ही क्यों रहते हैं? है संगम, पर संगम का ये मतलब नहीं होता कि संगम मैंने बैलेंस का ये अर्थ नहीं है कि हम कलयुग और सतयुग दोनों के बीच में हैं, इसलिए हमारे अंदर मिक्स संस्कार हैं, सतयुग के भी आ जाते हैं, ये बैलेंस नहीं है। वास्तव में बैलेंस कोई स्थिति नहीं है, बैलेंस एक तरीका है, बैलेंस एक विधि है प्राप्ति के लिए। क्या सतयुग में बैलेंस होगा? क्या आपको बैलेंस करना पड़ेगा? ये भी नोट करने की बात है कि प्राप्ति कंप्लीट होती है जब बाबा कहता है सर्वगुण संपन्न, तो उसमें कोई अवगुण का मार्जन है? नहीं है। सर्वशक्ति संपन्न कोई मार्जन है कमजोरी का? नहीं है। तो वो है कंप्लीट स्टेज, वहां बैलेंस क्या कहेंगे? प्रेम है तो प्रेम कंप्लीट है, बाबा प्रेम का सागर है, या थोड़ी सी घृणा भी उसमें अलाउड है? नहीं। तो फिर बैलेंस किसको कहते हैं? बैलेंस का मतलब ये है कि बिल्कुल इस स्टेज से जहां हमें घृणा ही घृणा है, जहां प्रेम भी घृणा में बदल जाता है ही घृणा की दुनिया, उससे उस स्टेज पर जाना है जहां ये गायब हो जाए। तो बीच में जो रास्ता है उसमें बैलेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति रस्सी पे चलता है ना, तो रस्सी पे चलने वाला हाथ से बैलेंस करता है। सर्कस में एक पहिए का साइकिल होता है, वो भी हाथ से बैलेंस करता है, लेकिन बैलेंस किस लिए करता है कि मैं बिना किसी तकलीफ के बिना गिरे वहां पहुंच जाऊं। तो बैलेंस हमें अब आवश्यक है। तो ऐसे नहीं है कि हम संगम को भी बैलेंस समझ लें। संगम हमारे लिए इसलिए है कि हम यहाँ का चुकतू करके, चाहे वो अपने कर्म भोग हैं, चाहे संबंध हैं, चाहे पिछले पाप हैं, उसको चुकतू करके उधर जाते 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 कंप्लीट हो जाएं समय से पहले। उसके लिए हमें बैलेंस करना है। इस दुनिया में बैलेंस की आवश्यकता है। कलयुग वालों को तो बैलेंस की आवश्यकता ही नहीं है, वो है ही इम्बैलेंस में। उल्टी दुनिया को देखना हो तो उल्टा होके देखना पड़ता है। कलयुग में तो कोई चीज भी बैलेंस में नहीं है। क्या क्यों? कलयुग की परिभाषा क्या है? कलयुग में कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। ये है कलयुग। अब क्या बैलेंस रखोगे आप? जब शरीर का ही भरोसा नहीं है, जब किसी चीज का भरोसा नहीं है। अच्छा, सतयुग की क्या परिभाषा है? सतयुग में हर चीज ठीक स्थान पर, ठीक समय पर, ठीक तरीके से होती है, वो है सतयुग। तो उस बैलेंस रखने के फलस्वरूप हम सतयुग में जाते हैं और बहुत समय तक हमारा जीवन बैलेंस में रहता है। अब देखो, आज हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, अर्थात कि सारी प्रकृति के अंदर डिस्टरबेंस हो गई है। वो धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है कि प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो हमारा विनाश में मदद करेंगे, कितना दुख देंगे। अच्छा, इकोनॉमिक इम्बैलेंस, ये देखिए कि गरीब हैं तो गरीबी होते जा रहे हैं, अमीर है तो अमीरी बढ़ते जा रहे हैं, इम्बैलेंस है। अच्छा, कोई भोजन करता है तो यहाँ कहते हैं खाना भी जो है अच्छा अच्छा लगेगा तो ज्यादा खा लेंगे, कोई चीज पसंद नहीं तो कहेंगे मेरा उपवास है, मुझे नहीं पसंद है। अच्छा, तो भी इम्बैलेंस। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, कोई बैलेंस्ड डाइट खिलाओ, बैलेंस करो, ये इधर हो गया इधर करो। तो सतयुग में ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि हमने मनुष्य आत्माओं ने बैलेंस को तोड़ा है, तो तोड़ते तोड़ते परिवारों में, संबंधों में भी इम्बैलेंस हो गया, हर चीज में हो गया। ये तो इम्बैलेंस की दुनिया है। तो इम्बैलेंस से बैलेंस करते करते हमको कंप्लीट बैलेंस की दुनिया में आना है। बैलेंस का ये मतलब है, और हमें हर चीज में बैलेंस करना पड़ता है। अब बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे जितनी हमारी शक्तियां हैं सब में बैलेंस है, आप देखेंगे ऑपोजिट है। कहां हम शीतला स्वरूप, कहां बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप। शीतला स्वरूप भी बनो, ज्वाला स्वरूप भी बनो, क्या मतलब हुआ? अच्छा, लव और लॉ का बैलेंस रखो। अच्छा, कर्म का और काम ही ना करते रहो, कर्म का और आराम का भी बैलेंस रखो, है ना। किसी चीज का भी एक्सेस होता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड कहा जाता है। तो यहां पर कोई भी चीज आप एक्सेस में करेंगे आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। आप ज्यादा चीनी खाओगे बीमारी हो जाएगी, ज्यादा घी खाओगे बीमारी हो जाएगी, कम खाओगे बीमारी हो जाएगी। लेकिन आज के मनुष्यों की बुद्धि जो है, बाबा कहता विनाश काले विपरीत बुद्धि तमोगुणी बुद्धि, वो जज नहीं कर पाते। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परख शक्ति इम्पोर्टेंट है, और परख शक्ति ही बैलेंस करवाती है। परख शक्ति के लिए बाबा ने हमें तीसरा आंख दिया, लेकिन हम दो आंख खोल लेते हैं, तीसरा यूज नहीं करते, तो बाबा कहता गड़बड़ हो जाती है। मान लो आजकल की दुनिया में, आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, कभी अपने शरीर का बहुत ध्यान रखो, बार बार जगह जगह यही, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है, वो आत्मा का ध्यान तो नहीं रखते, शरीर का रखते हैं कि शरीर में ज्यादा भोजन नहीं जाना चाहिए, एक्सरसाइज, वहां भी बैलेंस कहते हैं कि अगर तुम कोई चलने फिरने का काम नहीं करते तो कम खाओ, नहीं तो एक्सरसाइज करो, बैलेंस कहते हैं। अच्छा, अगर किसी को, आज के व्यक्ति को पूछा जाए, कोई देवता आ जाए और आपको कहे कि भाई आपका वजन तीन गुना कर देते हैं, आपकी बॉडी का वेट 3 गुना कर देते हैं। कोई मानेगा? कोई मानेगा कि मेरा वजन 3 गुना कर दो आज के जमाने में? क्या ख्याल है, मानेगा? नहीं मानेगा। ठीक है, अगर उसको कहो तेरा धन 3 गुना कर देते हैं तो फटाफट मान जाएगा। यद्यपि अगर गौर से देखा जाए वो भी वजन है, वो भी वजन है, पर उसकी बुद्धि ऐसी है, ये नहीं पता इस दुनिया के अंदर सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, जितनी चीज चाहिए उतनी आपके पास रहनी चाहिए, ज्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम, कम होगी तो भी प्रॉब्लम। आज बहुत सारे लोग ज्यादा खाने से मर रहे हैं और बहुत लोग भूखे रहने से मर रहे हैं, तो इसलिए वो बैलेंस रखते ही नहीं। हम लोगों को भी बाबा कहता है बैलेंस रखने के लिए 2 बातें इम्पोर्टेंट होती हैं, एक समय और एक स्थान। अगर आपने अच्छी चीज भी करी, अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज, लेकिन गलत समय पे करी तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब किसी को बहुत अच्छा गीत गाना आता है, बहुत उसकी तारीफ होती है, और रात के 12 बजे उठ करके गाना शुरू कर दे तो पड़ोसी को डिस्टर्ब होंगे कि नहीं? मतलब क्या हुआ, समय गलत है। अच्छा, इसी प्रकार से किसी को कोई अच्छा नेक काम करना है और वो जाके गलत जगह करना शुरू कर दे तो भी वो नेक गिने नहीं जाएगा कि कैसे लोगों के बीच में आके मान लो किसी को ज्ञान देना है और किसी क्लब में जाके लोग हंस के ज्ञान देगा तो उसमें समझ में नहीं आएगा। बाबा कहता है भक्तों को दो, मंदिर में जाके दो, शिव के मंदिर में दो, लक्ष्मी नारायण को दो, तब समझ में आएगा। इसी प्रकार से इस बात को सिद्ध करने के लिए भक्ति मार्ग में समय और स्थान का महत्व दिया गया। गंगा तो बहती है हिमालय से लेकर नीचे तक, लेकिन बीच में स्थान बनाए गए हैं, यदि हरिद्वार है, इलाहाबाद है, बनारस है, वहां स्नान करो, अर्थात स्थान का महत्व दिया गया। आपके घर में भी गंगा का पानी आ सकता है, वो नहीं गिना जाएगा। इसी प्रकार से परमात्मा तो कहीं भी याद कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में करो। घर में मंदिर होगा तो भी माताएं कहेंगे हमने उस मंदिर में जाके करना है, स्थान का महत्व है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, आप गौर से देखिए, यहां तक समय का भी है, वो कहेंगे स्नान पूर्णमासी के दिन जाके करो तो ज्यादा लाभ है, फलाने दिन करो तो और ज्यादा लाभ है, अर्थात समय को भी देते हैं। पार्लियामेंट में भी नेता लोग शपथ लेने के लिए भी मुहूर्त निकलवाते हैं कि फलाने दिन मैं शपथ लूंगा मुहूर्त से, हालांकि उसका कोई फायदा नहीं होता। अब बाबा कहता है मेरे बच्चे हमको बैलेंस रखना है। गौर से देखिए, मुरली चल रही है। अच्छा, तो मुरली में हमें मुरली सुननी है, लेकिन हम क्या करते हैं, मुरली के समय सेवा याद आएगी, मुरली के समय आएगा योग, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा चीज तो योग ही है, अच्छी तरह वो सोचते रहेंगे। अच्छा, फिर व्यर्थ भी आ जाएगा तो खिसक गया, रात को सोना है। अब बाबा ने कह रखा है कि बच्चा अगर सोना है और ठीक नींद करनी है और नींद को भी तुमने यात्रा में जोड़ना है, तरीका बताया हुआ है कि रात को सोने से पहले डिटैच होकर याद में बैठो, जो कुछ तुमने दिन में किया बाबा के आगे समर्पित करो, याद करके सो जाओ। रात को क्या करते हैं फिर, वो नहीं करते, और बातें याद आती हैं, मैंने कल ये करना है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अर्थात कंसंट्रेशन नहीं है। अमृत वेले बाबा कहते ऐसे करके खाट में नहीं लेटो, उठ के बैठो, एक सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ, अगर तुम नहीं पहुंचे तो माया इधर उधर ले जाएगी। आप रोज करके देख लो, कोई भी अमृत वेले सो जाएगा उसकी 4:45 बजे आंख खुल जाएगी, ये भी आप देख लो। ये सारी बातें हैं, तो इसलिए टाइमिंग भी प्रॉपर है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसको करें, तब करके फिर कहा गया है एक नामी एकाग्र एकांत, और उसके बाद है एक रस। अब एक रस का कई मतलब होते हैं, एक रस का मतलब है कि आप बैठे हैं तो बैठे ही रहिए, ये एक रस है। या एक लेवल पे चल रहे हैं, 5 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहे हैं तो 5 किलोमीटर के चलिए, ये एक रस है। एक रस का ये मतलब नहीं है। एक रस का मतलब ये है कि संगम युग पर चढ़ती कला में हम सदा चढ़ते रहें, वो है एक रस। और सदा नवीनता रखें। बाबा ने कहा हुआ है कि नवीनता और लगातार हमें उन्नति फील हो, इसको हमने एक रस कहना है। और फिर बाबा ने लास्ट में कहा हुआ इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमी का क्या मतलब है? एक तो पैसे की इकोनॉमी होती है, वो भी बाबा बताते रहते हैं। अभी कल ही कहा था कि अपना पैसा किसी रॉन्ग व्यक्ति को देना वो बहुत बड़ा पाप है। उसके अलावा इकोनॉमी, बोल की इकोनॉमी, हमारे जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। अच्छा, क्या हम जो बाबा मधुर बोलो कहता है, हम सचमुच मधुर बोलते हैं या कभी बनाकर मधुर बोलते हैं? जैसे दुकानदार होता है, कस्टमर आता है तो बहुत मीठा बोलता है, अगर कस्टमर सामान वापस करने जाए चला जाए तो उसकी टोन बदल जाती है। अच्छा, इसी प्रकार से रिसेप्शनिस्ट भी बहुत मीठा बोलते हैं, तो बाबा कहता है मधुर तो बोलते हो, अब जानकी दादी जी के आगे जाएंगे तो क्या क्रोध दिखाएंगे, छुपा छुपू कर भी मधुर बोलेंगे। लेकिन बाबा कहता है मधुर सहज रीति से, नेचुरल स्वभाव से बोले, कोई ऊपर नीचे भी बात हो जाए, कोई गलती भी कर दे, कुछ भी कर दे, मधुर बोले, वो है। बाबा तो कहता मैं तो मीठे मीठे शुरू में भी कहता हूँ, मीठे मीठे बाद में भी, हम रिपीट भी कर देते हैं, मीठे मीठे बाबा को, मीठे मीठे याद प्यार, वो मीठा। इसलिए प्रैक्टिकल होना चाहिए ना, तो हर हमारा जो धारणा है वो प्रैक्टिकल में आए, इसको इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी मैंने, जिसने एकाग्र होना है उसने अपना सारा इधर उधर से कंसंट्रेशन हटा के अपने काम से मतलब रखना है। कई बार हम कह देते हैं इसमें क्या नुकसान है ना। मान लो कोई आगरे घूमने चले जाते हैं, या आमतौर फैशन हो गया कि जाना है तो चलो सोमनाथ देख आओ, वहां देख आओ, तो बाबा नोट करता है, भले जाओ मेरे को क्या है, बाबा नोट करता है कि तुम्हारी बुद्धि है किधर। वरना आप सोचो इतने सारी करोड़ों आत्माओं में से थोड़े से क्यों नजदीक आते हैं, सतयुग में थोड़ी आबादी क्यों होती है और थोड़े पद क्यों होते हैं, और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। तो बीके तो सारे हैं, तो जानकी दादी कहती हैं बीके सारे हैं, ब्राह्मण थोड़े हैं। क्या बीके ब्राह्मण नहीं है? क्यों जी नहीं, बीके क्षत्रिय भी बनने वाले हैं, ब्राह्मण सिर्फ सतयुग में आएंगे। तो बाबा ने डेफिनेशन दी हुई है कि जो कोई भी आत्मा सो कल्याण के लिए ज्ञान सुनती है, सो कल्याण के लिए धारणा करती है, सो कल्याण के लिए सब कुछ करती है, वो आएगी त्रेता में बीके। और जो कुछ ना कुछ विश्व कल्याण के लिए करती है वो आएगी सतयुग में। डिपेंड करता है कि विश्व कल्याण का तुम्हारा अप्रोच है। तो बाबा ने कहा और कुछ भी ना करो, सुबह से शाम तक इतना ही सोच लो कि मुझे शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है हर एक के लिए। जरा भी हमने, हम देवता बनने वाले हैं, जरा भी हमने ये नहीं सोचना कि ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसे किया। हमें जजमेंट नहीं करना, हमें अपना फर्ज करना है। जैसे गुलाब का फूल होता है वो खुशबू देता है, वो ये नहीं देखता इसको दूं या इसको ना दूं। मंदिर में गुलाब का फूल रखोगे खुशबू देगा, गुलदस्ते में रखोगे खुशबू देगा, और कूड़ेदान में डाल दोगे तब भी खुशबू देगा, क्योंकि गुलाब का फूल है, उसने ये नहीं देखना। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये व्यक्ति तो कूड़ेदान है, सुबह से शाम तक व्यर्थ करता है, इतने साल से ज्ञान में आता धारणा ही नहीं करता, इसको क्या देना है। या कोई बेचारा बीमार है, हम कहेंगे अपना कर्म भोग भोग रहा है, मैंने क्या लेना है इससे, तो फैमिली हुई। अपना भाई भोग रहा हो तो फिर तो भाई तो नहीं माना ना। तब बाबा कहता ये भी बात है। इसलिए सार ये है कि हम, हमारा जन्म है अलौकिक, ब्राह्मण बीके मीन्स अलौकिक, हमारा कर्म होना चाहिए अलौकिक, हर लौकिक को अलौकिक में हम बदल सकते हैं और वो अलौकिक पना ही हमें न्यारा करेगा। और बाबा से लगन रखेंगे तो बाबा कहते हैं जो हम समझते ना ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता सब हो सकता। और अगर हमने चेक करना हो कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं तो आप ये देख लीजिए, हमारे सारा दिन इजी बीतता है। इजी मैंने बाबा कहते हैं संगम युग में मौज बनाओ, नशे में रहो, खुशी में रहो, नाचते रहो, तो वो स्टेज रहती है हर वक्त। या कई बार हमें कष्ट उठा के या थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करके ज्ञान के नियमों का या मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। अगर हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, चाहे शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे या भाव स्वभाव के तौर पे, कोई कहे सेवा में इसको तुम्हारे साथ भेजना है, नहीं इसको नहीं उसको भेज दो इस प्रकार से, या मेरे कमरे में इसको क्यों रख दिया, मेरा कमरा हो गया, आप बताओ 7 दिन के लिए यहाँ आए हैं, कमरा अलॉट हो गया तो मेरा हो गया, वो बेड को भी कहेंगे मेरी बेड है, तो दूसरा आके बैठा भाई ये तो मेरी बेड है, बाबा कहता हूँ मेरा कहाँ क्या हुआ फिर। इसलिए अनकंफर्टेबल ना हो तो ज्ञान की पॉइंट्स को यूज करके हमें प्रैक्टिकल में फील होना चाहिए कि हम अपने खुद इजी रहेंगे तो दूसरे को इजी रखो। और इसका एक ही कारण है कि व्यर्थ किसी न किसी प्रकार से कमजोर आत्मा होने के कारण धारण हो जाता है और वो व्यर्थ अंदर जाके डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए बैलेंस डज नॉट मीन कि बैलेंस में 50-50 इसको बैलेंस कहते हैं, नहीं। अब आप भोजन बनाते हैं तो हर चीज 50-50 थोड़ी डालते हैं, कोई चीज बहुत थोड़ी डालते हैं, वो भी बैलेंस के लिए जरूरी है कि हमें अपने समय को कहाँ ज्यादा ध्यान देना है कहाँ कम देना है। तो बैलेंस का ये मतलब है कि एक्यूरेट, उसमें टाइम का भी ध्यान हो, स्थान का भी ध्यान हो, अपनी हीरे जैसी तराजू का भी ध्यान हो, मेरा जीवन ऐसा बनना चाहिए, और साथ साथ संगठन का भी ध्यान हो। इस बाबा ने कहा परिवार से सर्टिफिकेट लेना है, बाबा से सर्टिफिकेट लेना और अपने आप से भी लेना। मैं संतुष्ट हूँ, पहले तो मैं संतुष्ट होना चाहिए अंदर से, तभी बाबा कहता है, पूछते हैं बच्चे ठीक हो, ठीक तो हैं बाबा लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं है। ये जो बीच वाला शब्द है वो इसीलिए है कि मेरा तो शिव बाबा एक हाँ जी, दूसरा ना कोई डाउट, दूसरे भी हैं। तो बाबा कहता है स्वर्ग देखो, नहीं यहाँ की चीजें भी अच्छी हैं। ओम शांति।
राग में जो कहा हो रहा साकार है साकार में जो कहा हो रहा साकार है मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा।